रुद्राक्ष ईशानी को वेरोनिका से बचाकर घर वापस लेकर आ गया था। वो वापस पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। ईशानी और रुद्राक्ष पिछले 7 घंटे से घर से बाहर थे। इस बीच माया ने आलिया को वापस मुंबई शिफ्ट होने का बोल दिया था और आलिया अपने लगेज के साथ गाड़ी के पास खड़ी थी। उसके साथ में दिव्या और माया भी थीं। आलिया का वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन माया के आगे वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उस घर में आखिरी फैसला माया का ही होता था। आलिया का चेहरा उतरा हुआ था, ऊपर से रुद्राक्ष भी घर नहीं आया था। जैसे ही रुद्राक्ष और ईशानी की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई, आलिया के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। आलिया धीरे से बोली, अब भाई ही हैं जो मुझे कैसे भी करके यहाँ रोक सकते हैं। आलिया उम्मीद भरी नज़रों से रुद्राक्ष की गाड़ी की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष और ईशानी बाहर निकले तो आलिया जल्दी से रुद्राक्ष की तरफ चली गई। वो रुद्राक्ष के गले लगते हुए बोली, भाई मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। मैं तो यहाँ और रुकना चाहती थी, लेकिन दादी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूँ। अब दादी ने कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना आलिया। फोकस ऑन योर करियर, इट वुड बी बेटर फॉर यू, रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा। आलिया ने महसूस किया कि आज पहली बार रुद्राक्ष ने उसे हगबैस नहीं किया था, वरना जब भी वो उसके गले लगती थी तब वो काफी प्यार से उसके बालों को सहलाता था। ये सब ईशानी की वजह से हुआ था। सोचकर ही आलिया के गुस्से में आलिया की मुठ्ठियाँ बन गई थीं। वो रुद्राक्ष से अलग हुई और फिर ईशानी की तरफ देखते हुए कड़वाहट से कहा, अब तो खुशी मिल गई ना तुम्हें, हमारे घर में फूट डालकर। हमारे घर की खुशियाँ बर्बाद करके तुम भी खुश नहीं रह पाओगी ईशानी शर्मा, जाना तो तुम्हें भी यहाँ से होगा। हाँ ज़रूर जाऊँगी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जाऊँगी, तुम्हारी तरह इस तरह ज़बरदस्ती भेजी नहीं जाऊँगी, ईशानी ने आलिया को घूरते हुए कहा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर आलिया हंसकर बोली, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस पर तालियाँ तो बनती हैं, तुम यहाँ से ज़बरदस्ती ही भेजी जाएगी। इनफैक्ट तुम आई ही हमारी लाइफ में ज़बरदस्ती हो। याद नहीं है क्या, दादी ने तुमसे डाइवोर्स पेपर साइन करवाए थे, तो किसी गलतफहमी में मत रहना। गलतफहमियाँ यहाँ सबकी दूर हो जाएगी आलिया, बस थोड़ा टाइम दो, ईशानी ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो आलिया को चिढ़ाने के लिए अपना हाथ हवा में हिलाकर बोली, गुड बाय आलिया, उम्मीद है कि इस बार मैं तुमसे जेल में ही मिलने आऊँ। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। वो उसे अंदर ले जाते हुए धीरे से बोला, हर जगह अपनी ज़ुबान चलाना ज़रूरी नहीं होता है वाइफी, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे किसी भी घर वाले के साथ बदतमीज़ी नहीं करोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी ज़िद करनी होती है। इसी फैमिली से सीखा है डियर हबी कि सामने वाले के साथ ज़बरदस्ती कैसे की जाती है, ईशानी ने उसी के अंदाज में जवाब दिया और फिर रुद्राक्ष के साथ अंदर चली गई। आलिया उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। जब वो अंदर चले गए तब आलिया माया की तरफ मुड़ी और उससे कहा, दादी एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आपने मुझे यहाँ से भेजा तो आप अकेली पड़ जाएगी, यहाँ आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा और वो ईशानी शर्मा आपके सिर पर चढ़कर नाचेगी। हम अपना देख लेंगे, वैसे तुम भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, तभी यहाँ से निकाल रहे हैं। जब तुम्हें निकाल सकते हैं तो उस लड़की की हमारे आगे कोई औकात नहीं है। चलो अब जाओ, तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, माया ने सख्ती से जवाब दिया और फिर एक नज़र आलिया को देखकर वहां से चली गई। आलिया ने दिव्या की तरफ देखा तो दिव्या ने कंधे उचकाकर कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, अगर मेरी इस घर में चलती तो आज इस घर में तुम, मैं, तुम्हारे डैड और भाई के अलावा और कोई नहीं रह रहा होता, ना वो रुद्राक्ष खुराना और ना ही तुम्हारी प्यारी दादी। तुम बहुत फेवर करती हो ना उनका, उनकी बात मानती हो, तो अब मुझसे क्यों उम्मीद रख रही हो, जाकर अपना काम करो, कम से कम तुम्हारा दिमाग तो सही रहेगा इससे, कहकर दिव्या ने आलिया को हक कर दिया और फिर उससे अलग होकर अंदर चली गई। एक एक करके सब आलिया का साथ छोड़ चुके थे तो उसे वहां से जाना पड़ा, वो भी अपनी जिद की पक्की थी। आलिया एयरपोर्ट जाने के बजाय इस वक्त लंदन के ही किसी होटल में थी। उसके साथ में संजना बैठी हुई थी। आलिया ने पूरी कहानी संजना को बता दी थी, जिसे सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। वो उसी अंदाज में बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, रुद्राक्ष उस लड़की का फेवर क्यों कर रहा है, और दादी ने भी तुम्हारे बजाय उसे चुना। तुम्हारी जगह मैं होती तो उसको पूरा जलाकर खाक कर देती, तुमने तो बस हाथ ही जलाया था। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब उसके साथ कैसे हो गए। जो भी हो संजना, मैं हार नहीं मानने वाली, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है तो मैं यहाँ होटल में रह लूँगी। वैसे भी मेरी नेक्स्ट मूवी की शूट कुछ दिन के लिए लंदन में ही होने वाली है, तो मैनेजमेंट सारा कॉस्ट उठा लेगा। कम से कम 3 महीने तो मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। किसी भी बहाने से रहो, लंदन से नहीं जाने वाली मैं, आलिया ने गुस्से में जवाब दिया। उसने जैसे तैसे करके लंदन में रहना मैनेज कर ही लिया था, चाहे बहाना जो भी रहा हो। संजना ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर आलिया के हाथ को सहलाकर कहा, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं डैड को बोल दूंगी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। संजना के साथ देने पर आलिया को कुछ उम्मीद हुई कि एटलीस्ट वो अकेली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष इस वक्त ईशानी के साथ अपने फ्लोर पर था। रुद्राक्ष ईशानी के लिए किचन में खाना बना रहा था और वो उसके पास में बैठी सब कुछ देख रही थी। मैं आपसे कब से कह जा रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, फिर आप क्यों खामखां के लिए सब कुछ कर रहे हो? आपके घर वालों को पता है कि मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है, वो मेरे लिए खाना भेज सकते हैं, फिर आप क्यों अपना काम छोड़कर कुकिंग करने में लगे हो? मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से मुझे भी कुछ नहीं करने दे रहे। रुद्राक्ष को रोकने के लिए ईशानी बार बार उसकी हेल्प करने का कह रही थी। पहले ही रुद्राक्ष ने उसकी किसी भी तरह की कोई मदद लेने से मना कर दिया था। रुद्राक्ष सब्जियां काट रहा था, उसने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा और फिर सख्त अंदाज में कहा, अगर मेरी कोई हेल्प करनी ही है तो अपना मुंह बंद रखा करो, तुम्हारी वजह से तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है। क्या जरूरत थी आलिया को इतना सब कुछ कहने की, खासकर जेल का नाम लेने की? तुम मानने वाली नहीं हो ना? चलो आपको समझ में तो आया कि मैं नहीं मानने वाली हूँ और कभी नहीं मानूंगी। रुद्र, आप कभी नहीं समझोगे मेरी फीलिंग्स को। आपको एक बार मेरी बहन की डायरी पढ़नी चाहिए थी, फिर पता चला कि वो बेचारी किन किन मुश्किलों से गुजरी थी। ईशानी ने भारी आवाज में जवाब दिया, बोलते हुए वो इमोशनल होने लगी थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर शांत लहजे में कहा, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ था तो उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने हार मानकर सुसाइड कर ली। जब उसने हार मान ली तो तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो? वैसे भी वो इस दुनिया में नहीं रही, तो उसे इंसाफ दिलाकर तुम क्या कर लोगी? उल्टा अपने लिए ही मुश्किलें बढ़ा रही हो। रुद्राक्ष अब ईशानी को काफी प्यार से समझा रहा था। रुद्राक्ष के इतना समझाने के बावजूद ईशानी ने नामे सिर हिलाकर कहा, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं नहीं मानने वाली हूँ। उसकी जगह कोई भी होता तो उस हालत में सुसाइड कर लेता, सब उसे छोड़कर चले गए थे। आप अपनी बहन को कम समझते हैं क्या? आलिया खुराना ने सिर्फ मेरी बहन के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ में गलत किया है। ये तो आपने मुझे जबरदस्ती किडनैप करके मुझसे शादी कर ली, वरना मैं हर उस लड़की को कोर्ट में लेकर आती, फिर आपको पता चलता कि आपकी बहन कितनी बुरी इंसान है।
बोलते हुए ईशानी काफी अग्रेसिव हो गई तो रुद्राक्ष चिल्लाकर बोला, अब बस भी करो ईशानी, मैं इरिटेट हो गया हूँ बार बार तुम्हारे मुंह से ये सुनकर कि आलिया कितनी बुरी है या तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ। हमारी भी लाइफ है, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। रुद्राक्ष के चिल्लाने पर ईशानी चुप हो गई। आज पहली बार उसने ईशानी के साथ रहने के बारे में कुछ कहा था, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहा था, तो ईशानी ने कुछ पल रुककर धीरे से कहा, क्या आप मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं, हमेशा के लिए? अपनी फैमिली से बगावत कर पाओगे आप रुद्राक्ष? हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी ये बदला लेने की जिद छोड़नी होगी। तुम्हारी बहन मर चुकी है, उसकी वजह से अपना फ्यूचर खराब मत करो। मैं दादी और डैड से बात कर लूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इन रिटर्न तुम्हें सब कुछ भूलकर आलिया से माफ़ी मांगनी होगी। तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस और फैमिली रेपुटेशन को बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए पूरी फैमिली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और हाँ, उन्हें कन्विंस करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, रुद्राक्ष ने अपनी शर्त रखते हुए कहा, जिस पर ईशानी ने नम आँखों से नामे सिर हिला दिया। रुद्राक्ष हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। ईशानी, जो उसके साथ रहने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, आज रुद्राक्ष ने जब हामी भर दी थी तो वो मना कर रही थी। ईशानी अपनी जगह से खड़ी हुई और कहा, सॉरी मिस्टर खुराना, आपकी फैमिली ने आपको ज़बरदस्ती करना और दूसरों को दबाना ही सिखाया है, तो मेरी मॉम ने मुझे यही सिखाया है कि जब तक गलती ना हो तब तक ना तो सॉरी बोलना चाहिए और ना ही किसी के सामने झुकना चाहिए। अगर किसी को सॉरी कहना चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो आपकी फैमिली है। आपकी बहन को बोलिए कि वो मेरी माँ से और मुझसे माफ़ी मांगे, कोर्ट में जाकर अपना गुनाह खुद करें, शायद इससे उसकी सज़ा भी कम हो जाएगी। फिर मैं भी अपनी गलतियों के लिए आपकी फैमिली से माफ़ी मांग लूंगी और हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे, पूरी फैमिली के साथ। आप मेरा इतना काम कर दीजिए, आलिया को सज़ा दिलवा दीजिए, मैं आपकी फैमिली से माफ़ी मांग लूंगी। रुद्राक्ष और ईशानी ने अपनी अपनी शर्तें रख दी थीं, जो काफ़ी अजीब थीं। ना तो रुद्राक्ष अपने उसूलों के साथ समझौता करने वाला था और ना ही ईशानी। ईशानी और रुद्राक्ष बिना पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, इस उम्मीद के साथ कि उनमें से कोई हार मानेगा। काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद जब दोनों ने ही हार नहीं मानी तो ईशानी के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। वो वहां से अपने कमरे में चली गई थीं, जबकि रुद्राक्ष को इस वक्त ईशानी पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था।